उस शब में ऐसा दस्तरखान मेरे सामने बिछने वाला था कि मैं भी शामिल रहता। अब क्या बताऊं, बहुत सुस्ती दिखाई। अब वो दस्तरखान बिछा है लेकिन मैं नहीं हूं, यानी मैं हूं लेकिन नहीं हूं।
अफसोस ये है कि इंसान देर से इस मौके की कदर को समझता है।
सितारा की उम्र के वक्त तुम्हें नहीं पता रोजा रखने का क्या मजा था। मैं और शरीफा साथ में रोजा रखते थे, सुबह से लेकर मगरिब तक एक दूसरे को देखा करते थे कि चुपके से जाकर कोई कुछ खाना ले। तुम्हें इस भूख और प्यास का अंदाजा नहीं है। इफ्तार के वक्त रोजा खोलने की दुआ के साथ तुम मेरी बात नहीं समझ सकते, चूंकि तुम्हें इसका तजुर्बा नहीं। तुम्हें नहीं पता भूख क्या है, प्यास क्या है, इफ्तार का मतलब क्या है।
ठीक कहा जी, फरिश्तों में खाने पीने का तसव्वुर नहीं है, और हकीकत में यह भी एक इंसानों की बर्तरी की निशानी है फरिश्तों के ऊपर। खुदावंद आलम ने रोजे की फजीलत इंसानों को ही अता की है।
इस वक्त तो मैं भी महरूम हूं, ना भूख लग रही है और ना ही प्यास, कुछ नहीं।
और इसीलिए आसमानों पर आलम मलकूत में अहकाम इंसान से साखित हो जाते हैं और उसे रोजे रखने की कोई जरूरत नहीं है।
ये बताओ, क्या खुसरो वो नमाज पढ़ने का बहाना समझ गया है?
परेशान ना हो जी, मैं कोई काम बिला वजह नहीं करता।
अम्मी जान, आपने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया, ऐसे तो कमजोर हो जाएंगी। लीजिए दादी।
जीती रहो बेटी,
लीजिए।
बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब बेटा, जीती रहो।
वाह भाई वाह, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बहू।
खुसरो, अब मुझे गुस्सा रहा है, अपनी बहन से कह दो कि इतना मेरी प्यारी बहू ना कहे। मुझे गुस्सा आ रहा है और मैं कुछ से कुछ कह दूंगी।
बेगम, थोड़ा दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए, अलबत्ता अगर आप मुनासिब समझे तो।
मुझे ख्याल करना चाहिए या आपकी बहन को? अब इन हालात में जब तुम्हारे बाप हॉस्पिटल में हैं, दिन रात सिर्फ शादी की ही बातें क्या करती हैं?
अगर वो शादी की बात करती है तो इसलिए कि अम्मी जान को खुश रख सके, बस यही।
मुझे बेवकूफ़ समझा है या अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हो? अरे मैं किस जबान से इनसे कहूँ कि मेरी बेटी तुम्हारी बहू नहीं बन सकती।
अरे बेटी, क्या चाहिए?
मैं फ्रिज से पानी लेने आई थी, नानी जान को दवा खानी है।
ठीक है बेटी, मैं देता हूँ। ये ले बेटा, अब तो खुश हो गई ना, अगर तुम्हारी बात सुन ली हो तो।
अच्छा है, जाकर अपनी माँ से कहेगी तो बेहतर है, सोचेगी तो सही कुछ।
मैं 100 बार कह चुका हूँ लेकिन तुम मानोगे थोड़ी ना, इन सब बातों का वक्त नहीं है अभी।
अगर तुमने अपनी बहन से सिर्फ एक बार इस बारे में बात की होती तो इस वक्त ये हालात ना होते।
बात करूंगा और जरूर करूंगा, लेकिन अभी इन हालात में नहीं। अभी सरमस्त खुद बहाने की तलाश में है कि इससे कोई फायदा उठा सके, कम से कम उसे कोई मौका नहीं देना चाहिए।
ठीक कहते हो, देखो ये नमाज का भी कोई चक्कर होगा। हाँ, खुदा ही जानता है कि क्या सोचकर वहाँ नमाज पढ़ने गया है। आपने बिल्ली, तुमने कब देखा है कि सरमस्त ने नमाज पढ़ी हो?
हकीकत तो यही है कि मुझे भी ताज्जुब हुआ है, मुझे भी शक हुआ, क्योंकि उसके चेहरे से घबराहट नुमाया थी। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आखिर वहाँ नमाज के कमरे में क्या हो सकता है।
कुछ नहीं है माँ, वो दो अलमारियाँ नहीं देखी है क्या? जरूर सरमस नए मार्केट के कागजात की तलाश में है।
नहीं मेहताज, बाबा ऐसे नहीं थे जो इतने अहम कागजात को यूं ही नमाज खाने में छोड़ दें।
इत्तेफाक से वो वाहिद जगह है जहाँ सबका जाना मना था, वही कमरा था। इस वक्त सरमस भी समझा होगा कि कागजात वहीं है तो चला गया है, और फिर सोचा होगा कि गलती होगी, पता नहीं क्यों वहाँ नमाज पढ़ने गया
पता
था।
नहीं क्या सोचा उसने, वो घड़ी कैसे गिरकर टूट गई?
तुम्हें याद है कि मैंने कहा था कि जब तुम्हारी बहन यहाँ है तो सरमस को यहाँ आने का मुस्तकिल बहाना मिलता रहेगा?
तो
ये उसकी एक मिसाल है। मेरे ख्याल में इनका गुस्सा से ज्यादा वो इस घर में किसी और चीज की भी तलाश में है।
तो आप ही कहिए कि मुझे क्या करना चाहिए। अम्मी जान की तबीयत तो खराब है, इस वक्त उन्हें तीमारदारी की जरूरत है, इस घर में रहना ही होगा। बेचारी सीमा तो इसीलिए इस घर में रुकी हुई है, मैं तो उसे यहाँ से नहीं निकाल सकता।
अगर तुम्हें अपना काम नहीं आता तो मुझे आता है।
तुम क्या करना चाहती हो?
हसो,
फोटो तुम मेरा खींच रहे हो और उसे कह रहे हो हसो?
ले रहे हैं।
कुछ पता भी है तुम दोनों आखिर हो कहाँ? मदद भी हमें नहीं करने दी है, अकेले में कुछ बातें करनी थी। असल में आपके भाईजान तो घर में कुछ छूते ही नहीं है, कम से कम यहाँ कुछ उनसे काम करवा लूं।
तुम दोनों ने बहुत जहमत की है, तुम्हारा बहुत शुक्रिया।
नहीं अम्मी जान, जहमत कैसी, ये तो हमारा फर्ज था। मेहताब उठो बेटा, देर हो रही है।
बच्चों चलो उठो, चले हम भी चले।
अम्मी जान चले, आप कुछ दिनों के लिए हमारे घर चले ना।
नहीं बेटा, यही आराम रहता है घर में अपने।
पता है सीमा जान, मेरे खासा कुछ थक चुकी होंगी, अब उनको भी थोड़ा कुछ आराम कर लेने दें।
किसने कहा कि मैं थक गई हूँ? मैं थकी नहीं हूँ।
सीमा बेटा, मेहताज ठीक कहती, जाओ अपने घर पे ध्यान दो, यहाँ किस लिए रुकी हुई हो?
आप पर मेरी जान कुर्बान हो जाए, अगर खुदा ना खास्ता देर रात में तबीयत खराब हो गई तो फिर हम क्या करेंगे?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो खुदा चाहेगा वही होगा।
अम्मी जान ये कैसी बातें कर रही हैं? अम्मी जान ये कैसे मुमकिन है? कम से कम उस वक्त बाबा तो मौजूद थे, कोई ना कोई तो था।
तुम्हारे बाबा जान भी थे ना, तो रात होते ही तकिए पे सर रख के सो जाते थे, उसके बाद अगर बम भी फटे तो उन्हें नहीं असर होता था।
अल्हम्दुलिल्लाह गवाह भी कोई मिल गया। सुना आपने फरिश्ते साहब, मानवी मसाले हमारे लिए इतने अहम हैं कि सुबह के नमाज के वक्त मुझे उठाती थी। इसके कम से कम चार फायदे तो हैं।
अगर अम्मी जान इजाजत दें तो मैं खुद यहाँ रुक सकता हूँ, वहीं हाजी के कमरे में, वहीं कुछ बिछा कर सो रहूंगा, नमाज पढ़ूंगा, इसका सवाब हाजी को मिलेगा।
जरूर, ताकि तुम भी सुकून से अपना काम कर सको, इसे वहां रुकने मत देना।
डरो मत हाजी, कोई तुम्हारी बीवी से टक्कर नहीं ले सकता।
चलो सब लोग अपने घर जाओ, बस बहुत हो चुका। लेकिन वेकिन कुछ नहीं,
ठीक कह रही है, उनको तन्हाई की जरूरत है। चलो चले ना भाई, उनको तन्हाई की जरूरत है।
अच्छा मैं तो इजाजत दीजिए।
सुकून मिल गया जी।
लगता है इस बार मेहताज की बदगुमानियों का फायदा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक हो गया, खुदा का शुक्र।
तुम्हारे हक में तो अच्छा हुआ, लेकिन नाती पोतों के लिए नहीं।
नाती पोते, क्या मतलब तुम्हारा?
अभी देखोगे।
मरने से पहले ये भी देख लिया कि मेहताज को मेरी फिक्र हुई।
तुम कितनी सीधी हो सीमा, तुम्हारे ख्याल में वो दोनों मियां बीवी किचन में बर्तन धोने गए थे तुम्हारी हमदर्दी में? ये सब उनके खेल हैं।
मनु चेहर फिर से तुम शुरू कर रहे हो।
वो बहुत दिनों से शुरू कर चुके हैं, तुम सो रही हो। पहली ही रात जब तुम वहां ठहरी थी तो मैंने कह दिया था तुम्हारी भावज को पसंद नहीं आया है ये, उसीलिए उन्होंने ये काम किया कि तुमको बेवकूफ बना सके।
तुम्हें समझ में आ रहा है किस बच्चे के सामने क्या कह रहे हो?
कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ, इन बच्चों को भी पता चलना चाहिए कि आखिर उनके मामू जान किस तरह के आदमी है।
मनु चेहर,
मैं बिला वजह कोई बात नहीं कहता, तुम अपने भाई को नहीं पहचानते। वो अपना सारा कारोबार, सारी तिजारत छोड़कर आके यहाँ बैठ गया है इस कारखाने में, किस लिए आखिर? ताकि मेरी गलतियां पकड़ सके।
ये कैसी बातें हैं? ये बताओ क्या खुसरो फैक्ट्री जाते हैं?
जी, अगर नहीं जानती तो जान लो, जनाब उठकर फैक्ट्री आए हैं और अभी से अपने बाप की जगह लेने के चक्कर में पड़ गए हैं और मुझे गोल कर देना चाहते हैं। एक दिन फैक्ट्री के हिसाब किताब मांगते हैं। और एक दिन वो औरत को दिए हुए पैसों की रसीद की फरमाइश होती है, देखना चाहते हैं कि कहीं मैं उसे बेवकूफ तो नहीं बना रहा हूँ, उसके पैसे तो नहीं मैं खा ले रहा हूँ। क्यों? इसलिए कि उनकी बेटी उसकी बातों में आकर बेवकूफ बन चुकी है। उसे ये लगता है कि कहीं हम उसको बेवकूफ ना बना दे, कि उसके पैसे ना खा लें, बस यही।
मेहताब
जी? हाँ मैडम, मेहताब आपकी बहू। और आज तो तुमने सुन ही लिया होगा, अरे जिस कारीगर ने दूसरे कारीगरों के सामने मेरी बेइज्जती की, उल्टी सीधी बातें उसने मुझसे कही और मैंने उसको काम से निकाल दिया था।
अच्छा धीमे चलाओ।
उसी को दोबारा नौकरी पर रख लिया। क्यों? ताकि मेरी बेइज्जती कर सके। और फिर ये जनाब, ये समझते हैं कि आसमान में सुराख हुआ और उनकी बेटी आसमान से नीचे तशरीफ लाई है, लिहाजा हम मजबूर हैं कि उनके सामने जाके सर झुकाएं, ताकि एक दिन वो हमारी बहू बन जाए।
अगर आपको खुसरो से परेशानी है तो हम दोनों का नाम बीच में क्यों ला रहे हैं?
लो
एक मिनट, बात क्या है? अगर कोई बात है तो अब तक आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताई?
मुझे क्या कहना चाहिए था? तुम अपने भाई के सामने मेरी बात सुनने वाली हो आखिर? मैंने ये बातें इसलिए की हैं कि आप ये ना समझे महताज बिला वजह आप पर मेहरबान हो रही थी, बस। और हाँ, शादी वादी की बात अपनी जगह पर, मेरे ख्याल में ये शादी नहीं होने वाली।
क्या मैं गुजारिश कर सकता हूँ अपनी बातों के चक्कर में मेरे और महताब के मुस्तकबिल खराब ना करें?
मुस्तकबिल? मुझे अफसोस इस बात का है कि तुम भी अपनी माँ की तरह अपना सर बर्फ में छुपाए हुए हो और अपने आसपास के बारे में बिल्कुल बेखबर, कुछ भी पता नहीं है। बिल्कुल इसी की तरह माँ बेटे बिल्कुल एक ही तरह के हैं, और क्या।
क्या मतलब? अम्मी पापा सच कह रहे हैं। मैंने खुद सुना है कि मामानी किचन में मामू से कह रही थी हमारी बेटी उनके काबिल नहीं है।
कहा था?
लो सुन लिया ना।
मनु चेहर, यहीं से वापस घुमाओ, मुझे वापस जाना होगा।
भाई ये इसका तरीका नहीं है। क्या मतलब इसका?
मैंने कहा घुमाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि मुझे देखने के बाद फिर ये बातें कह सकते हैं या नहीं।
वहाँ जाकर क्या कहोगी? अगर तुम्हारी अम्मी ने पूछ लिया कि क्यों वापस आ गई हो तो फिर हैं? उस बेचारी बूढ़ी को परेशान करना चाहती हो हैं? ये नहीं हो सकता भाई।
बहुत बहुत शुक्रिया भाई जान, बहुत बहुत शुक्रिया, ये मेरी जहमतों का जवाब है, बहुत बहुत शुक्रिया।
तुम्हें सुकून मिल गया?
मेरी क्या गलती है?
सब इनकी बीवी का कसूर है, वही इन्हें बहकाया करती है। ये फोन किधर है?
अरे अम्मी क्या कर रही है?
मैं महताज को फोन करना चाहती हूँ और जो कुछ मुँह में आएगा कहूँगी।
अम्मी बेइज्जती मत करवाइए।
तुम बीच में मत बोलो।
ये तरीका इसका नहीं है।
मुझे अभी फैसला करना होगा।
फोन काटो।
अरे ये क्या कर रहे हो?
फैसला वाज़े है, तरीका ये है कि तुम अनजान बनी रहो लेकिन रोज अम्मी जान के यहाँ जाओ और अपना काम करती रहो। मैंने ये बातें इसलिए की हैं ताकि तुम होशियार रहना। और हाँ, उनकी बेटी को बहू बनाने की बात भूल जाओ। मैं नहीं चाहता कि हमें मजबूर समझे।
मुश्किल आप लोगों के दरमियान है, इस बीच में हम पीस रहे हैं।
मेरी समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब है? तुमने सुना नहीं सीतारायण क्या कहा? यानी पूरी तरह बेइज्जती करवा के ही मानोगे तुम? ओफो, आखिर तुम कब समझोगे? जो करना हो करो, मैं जा रहा हूं। सुन
मुस्लिम,
सो तो नहीं रही थी?
नहीं, इसीलिए फोन किया है।
तुमसे बात करनी थी।
किस बारे में?
हमारे बारे में। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ।
तुमने घड़ी देखी है? क्या टाइम हो रहा है?
हाँ देर तो हो चुकी है, लेकिन नाना जान के यहाँ तुमने तो कहा था कि फिर बात कर सकते हैं। देखो मैं खुलकर तुमसे बात करना चाहता हूँ, किसी की دخل اندازی کے بغیر کسی کی بھی مطلب اپنے گھر والوں کی.
سنو ساسان، میرا کل ایگزام ہے اور میرا یہ سب بات کرنے کا موڈ بھی نہیں ہے، کسی اور وقت بات کر.
کسی اور وقت مطلب تو بتاؤ.
کسی اور وقت یعنی کسی بھی وقت سوائے آج کے. اور فون شب ہے.
تم کس لیے پریشان ہو حاجی؟ کیا سوچ رہے ہو؟
بہت کچھ. اپنی زندگی کے بارے میں کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس عورت کی تنہائی کے بارے میں، کس امید پر بیٹھی ہے کہ میں زندہ رہوں گا یا نہیں. شریفہ کے بارے میں کہ پتہ بھی نہیں کہ کہاں ہے اور کیسے اسے ڈھونڈ سکتے ہیں. اپنے انجام کے بارے میں کہ کس طرح ایسے ہوا اور میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ سب کچھ.
ما اصابك من حسنة فمن اللہ وما اصابك من سیئة فمن نفسك. جو اچھائی تم تک پہنچی تو وہ خدا کی جانب سے ہے، اور جو برائی پہنچے تو وہ تمہارے نفس سے ہے.
ہمارے کیے کا سب کچھ ہے. میں بہت سی چیزوں سے غافل تھا. میں سمجھتا تھا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، پیسے بھی ہیں، اچھے بچے بھی ہیں، میں اپنی غلطیاں سدھاروں گا. لیکن اب دیکھو کیا ہوا. وہ میرے پیسے کہ جو میرے کچھ بھی کام نہیں آئے، وہ میرے بچے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، اور وہ میرا داماد جو میری موت کے انتظار میں ہے تاکہ سب کچھ ہڑپ کر لے. روز کوئی نہ کوئی ڈرامہ کرتا ہے، ہر روز.
ٹھیک کہا. وہ اسی وقت اپنا کام شروع بھی کر چکا ہے.
اس وقت اتنی رات گئے کیا کرنا چاہتا ہے؟
پھر سے موقع محل بھولے جا رہے ہو حاجی.
میں تو سب کچھ بھولا بیٹھا ہوں. باقی وہ کیا کرنا چاہتا ہے؟
شاید تمہیں دیکھ کر خوشی نہ ہو، لیکن دیکھ لو تو بہتر ہے.
یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟
آخر ڈاکٹر صاحب، آپ میری مجبوریوں کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. الحمدللہ ایک طرف سے ان کے بچے اب یقین کر چکے ہیں کہ ان کا باپ نہیں بچے گا، اسی لیے پریشان ہے. دوسری طرف سے اپنی ماں کو اس مصیبت کے لیے کیسے تیار کریں، اس کوشش میں وہ ہے. ان کو کیسے تیار کریں، ہم سب اس بات پہ پریشان. آپ یقین کریں، بہت پریشان ہیں. خود حاجی صاحب بھی، آپ یقین کریں، میں جانتا ہوں وہ واقعی پریشان ہیں. یقیناً اس سے وہ تکلیف میں ہوں گے.
خدا کی لعنت تم پر کہ میرے عذاب کی وجہ تم ہو سرمست. تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟
میں آپ کی پرابلم کو سمجھ سکتا ہوں سرمست صاحب، لیکن میں سمجھ نہیں پایا کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں.
بتاتا ہوں، अगर आपको याद हो आपने पिछली दफा फरमाया था कि हाजी साहब के कल्ब को किसी दूसरे दिल के मरीज को दिया जा सकता है।
जी दुरुस्त फरमाया सरमद साहब, लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ेगा कि जितनी देर आप लगाएंगे उसका इम्कान कम होता जाएगा, इसलिए कि खून की हरकत कम हो जाने से बदन के आज़ा को कुछ प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और यही वजूहत बाइस बन सकते हैं कि हम अपना काम ना कर पाए। लेकिन क्या हुआ, क्या उनकी फैमिली ने उसके बारे में कुछ सोचा है?
खुशी की बात यह है कि मेरी अहलिया और उनके भाई इस बात के लिए राजी हैं, यानी वो चाहते हैं कि दूसरे इंसान की भी जान बच सके और अपने बाप के दिल को भी जिंदा देखें दूसरे के सीने में कि ये दिल धड़क रहा है, इससे उन्हें सुकून भी मिलेगा। लेकिन एक बात है डॉक्टर साहब, हाजी साहब की बीवी किसी सूरत इसके लिए तैयार नहीं है, समझ नहीं आता क्या करें।
तो इस सूरत में मुझे अफसोस है कुछ नहीं किया जा सकता है। एक ब्रेन हेमरेज बीमार के ट्रांसप्लांट के लिए चूंकि माँ बाप 18 साल से बड़े बच्चों और बीवी की इजाजत इसमें शर्त है, और अगर कोई सिर्फ एक, गौर कीजिएगा सरमद साहब, कोई एक भी उसका मुखालिफ हो, ट्रांसप्लांटेशन का काम किसी भी सूरत नहीं किया जा सकता।
तो डॉक्टर साहब मैं भी इसीलिए आपकी खिदमत में आया था, अगर आप जहमत फरमाएं कोई नाम कोई एड्रेस कोई ईमेल उन बीमारों का मुझे दे दें तो शायद हम कोई रास्ता निकाल सकें और इस मुश्किल को हल कर सकें।
क्या फरमाया?
असल में डॉक्टर साहब मैं सोच रहा था कि अगर खुद उनकी अहलिया करीब से उन्हें देखें जिन्हें हाजी के दिल की जरूरत है और उनकी वही उम्मीद है तो शायद उनका दिल भी रहम खाए और शायद सवाब ही के लिए राजी हो जाएं, तैयार हो जाएं दिल अतिया करने पर और हमें भी सुकून मिल जाए। अलबत्ता उम्मीद है कि आपको गलत फहमी नहीं होगी, खुदा शाहिद है कि हाजी मेरे लिए सिर्फ ससुर नहीं थे बल्कि
जरूर झूठे,
वो सिर्फ मेरे बाप नहीं थे
ये करके मेरी खूबियों का जवाब दे रहे थे।
खुदा गवाह है हम सबको अगर जर्रा बराबर भी उम्मीद होती कि हाजी ठीक हो सकते हैं तो हम कुछ भी करते थे, लेकिन जब आप खुद ही फरमा रहे हैं कि कोई उम्मीद नहीं बची है तो फिर क्या कहें?
आप जिस चीज की तलाश में हैं वो गैर मुमकिन है जनाब, ना हमें अपने बीमारों की कोई बात कहने की इजाजत है और ना ही ये काम सही है।
सही नहीं है?
इस तरह के मरीज अपनी सूरत हाल की बुनियाद पर इंतजार करते हैं, ये काम शरायतो जवाबित के तहत होता है, ऐसा नहीं है कि जिसका नाम कुरे में आए तो मरीज की फैमिली के पास जाकर उनकी रिजायत ले ले।
मेरा मकसद ये थोड़ी था डॉक्टर साहब, मैं तो बस ये चाह रहा था कि जो आप मौके की बात कह रहे थे वो मौका कहीं निकल ना जाए, बस ये मुझे फिक्र है।
हम वापस क्यों आ गए?
जो तुम्हें सुनना था वो सुन चुके।
तुम्हारे ख्याल में सरमस्त अपने प्लान में कामयाब हो गया?
अभी तक तो नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ और नहीं सोचेगा।
लेकिन तुम्हें उसे रोकना पड़ेगा।
हाजी
मेरी खातिर इस बार मत कहना इजाजत नहीं।
शायद तुमने डॉक्टर की बात गौर से नहीं सुनी।
क्यों नहीं, गौर से ही सुनी है, लेकिन तुम कह रहे हो कि दूसरा रास्ता अपना सकता है।
नहीं हाजी, गौर नहीं किया। जितना वक्त गुजरता जाएगा उतना ही शायद तुम्हारा कल्ब किसी और को देने के काबिल नहीं बचेगा।
क्या तुम चाहती हो कि मैं सरमंस को इजाजत दे दूं कि वो जो चाहे करे और आफाक की रजामंदी ले ले?
पता है अगर ये काम हो जाए तो कितना सवाब तुम्हें मिलेगा। मन अहया वाहिदन فكأنما احيا الناس جميعا, जिस किसी ने एक शख्स को मौत से निजात दी वो ऐसा है कि जैसे उसने एक दुनिया को मौत से निजात दी है।
वाकई? यानी अगर शरीफा हमें नहीं मिल पाई और उसकी रजामंदी नहीं ले पाए तो तो भी मेरे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे?
नहीं हाजी, इसका अंजाम मेरे और तुम्हारे हाथ में नहीं है, सिर्फ आफाक के हाथ में है। लेकिन अगर इजाजत मिल जाती है तो तुम भी सवाब के हकदार बनोगे। बस सिर्फ तुम्हारे वालदेन की रजामंदी बचती है कि उनकी शर्त तुम खुद जानते हो।
हमें क्या पता शरीफा कहाँ है? सादिक भी तो नहीं जानता कि वो खत जा नमाज के नीचे है, तो फिर यूं ही बैठे रहे?
नहीं पता हाजी। यकीन रखो कि जिस काम की मुझे इजाजत हो वो जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हारे दामाद जी के दिमाग में जो चल रहा है इस सिलसिले में कुछ नहीं कर सकते, यानी मुझे इजाजत नहीं है।
मैं ये कहना चाह रहा था कि ये वो पैसे हैं जो आपने कहे थे, और जैसा कि आपने कहा था सब ट्रैवल चेक है।
ये भी उन लोगों का नाम और एड्रेस है जो इंतजार में बैठे हैं।
शुक्रिया।
नहीं, गौर से सुनो, मैंने ये लिस्ट फराहम करने में बहुत ही जहमत की है। अगर किसी को पता चला कि ये मेरा काम है, काम से भी निकाला जाऊंगा और जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी।
ठीक है भाई, हम दोनों की नीयत पाक है। तुम तो नकदन अपना सवाब ले चुके हो और मैं भी एक इंसान की जान बचाना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। ओफो, इतने सारे लोग हैं।
ये उन लोगों के नाम हैं जिनको कल्ब की जरूरत है। सबसे पहले वाले को सबसे पहले ज़रूरत है, उसका जल्दी ऑपरेशन होना है, और यूं ही आखिर तक चले जाओ।
ठीक है, हम भी पहले आदमी से ही शुरू करते हैं। अजफता, अब तो तुम्हारा काम तमाम है। ला 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 ला। खुसरो मियां, तैयार रहना हमारे।
सखाई जी जी, आए तशरीफ लाए।
कौन था बाबा?
वही जिसने फोन किया था कि एक खाल तुम्हारी अम्मी को दिला सकते हैं।
बाबा, मुझे शक है कि इसकी बातों में सच्चाई हो। अगर ऐसा होता तो हॉस्पिटल से सोहराब को कोई फोन करता।
नहीं पता, देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अभी अपनी अम्मी से बात ना करना, एक फोन भी सोहराब को कर दो, देखें घर आ सकता है कि नहीं।
अच्छा, आप उठ गई अम्मी जान, आपकी दवा का वक्त भी है।
बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। कौन आया था?
बाबा के मेहमान हैं, नहीं पहचानती।
ठीक है, जाओ उनकी देखभाल करो।
किसी और चीज की जरूरत है?
नहीं बेटा, जाओ।
अगर कोई काम हो तो बुला लीजिएगा।
ठीक है।
मैं जो मुजाहिम हुआ हूं तो मेरे आने की असली वजह यह है कि मरहूम की अहलिया अब तक अतिया करने के लिए तैयार नहीं हुई है। हालांकि उनके बच्चे तैयार हैं कि अगर किसी की जान बच सकती है तो बचा लेना चाहिए, लेकिन उनकी माँ अब तक राजी नहीं हुई है।
ये तो खुद ही एक बड़ी मुश्किल है, ऐसे तो कोई उम्मीद भी नहीं है।
अगर कोई उम्मीद ना होती तो मैं यहाँ आता क्यों जनाब? उनकी रजायत लेना वाकई मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है।
मैं नहीं पहचानती, पहले तो फोन किया था, अब खुद भी आ गए। शायद अम्मी जान के लिए कोई ट्रांसप्लांटेड कल्ब मिला है कि उसी के बारे में बात कर रहे हैं।
नहीं नहीं राना, मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। ये बातें अस्पताल के जरिए बताई जाती हैं, उसका एक खास तरीका होता है, यूं ही थोड़ी होता है।
मैंने भी इसीलिए तुम्हें फोन करके बुलाया है, अगर तुम खुद उनसे बात करोगे तो बात अलग होगी। तुम अभी कहाँ हो?
हम अपने तौर पर कोशिश करते हैं कि अतिया करने वाले के घर वालों को राजी कर लें, लेकिन कभी कभी ये होता है कि जिसको दिल की जरूरत है उसके घर वाले ज्यादा आसानी से उसको राजी कर सकते हैं।
लेकिन जहां तक मुझे इतला है दोनों फैमिलियों को एक दूसरे से अनजान रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना?
जी हाँ, आपने सही फरमाया है, लेकिन कभी कभी इंसान की जान की अहमियत इतनी होती है कि इंसान गैर कानूनी काम कर सकता है, कैसा नहीं है? क्या आप अपनी अहलिया की जान बचाने के लिए क्या सब कुछ करने को तैयार नहीं है?
अलबत्ते वो मेरी बीवी नहीं है, अगरचे मेरी मरूमा बीवी से बढ़कर उन्होंने मेरे बच्चों का ख्याल रखा है, लेकिन मेरे ख्याल में शायद वो खुद भी राजी ना हो। जैसा कि आप फरमा रहे हैं उनके लिए हर गैर कानूनी काम किया जाए।
ऐसा लगता है मैंने आके गलती की है।
मेरी बात को गलत ना समझे, मैं आपको नाराज नहीं करना
चाहता। नहीं जनाब, ऐसा लगता है कि हमारा आना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया।
प्लीज आप मत जाए, उस वक्त मुझको लगेगा कि उनको बचाने का वाहिद रास्ता खो चुका हूँ। बहरहाल मुझे माफ कर दे।
तो वो मोहतरमा आपके अहलिया नहीं है?
जी नहीं, वो मेरी दामाद की माँ है। अलबत्ता उनके बेटे को दामाद होने से पहले मैं उन्हें जानता था, उस वक्त से जब उनके शौहर एक एक्सीडेंट का शिकार हो गए थे और मेरे यहाँ कपड़े सीने का काम करने लगी। अपने पुराने घर में उन्हें एक कमरा दे दिया था, मेरी बीवी की बहन और साथी बन गई। जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ मेरे बच्चों की देखभाल करने लगी, माँ की याद नहीं आने दी। इतना मेरे बच्चों को चाहने लगी थी कि मेरे बेटे की शहादत की खबर सुनकर इनका ये हाल हुआ है। बहुत परेशान रहती थी, आप सोच भी नहीं सकते।
अच्छा, तो आपका भी ताल्लुक शहीद घराने से है, कितने खुशकिस्मत हैं।
अलबत्ता लापता शहीद।
ये तो और भी अच्छी बात है। मेरी नजर में हाजिया सुल्तानी के लिए ये और अच्छी खबर होगी।
हाजिया सुल्तानी?
आफाक साहिबा, हाजी फत्ता सुल्तानी की बीवी, वही जिनका कल्ब आपके दामाद की माँ को बचा सकता है।
अच्छा,
देखिए रसूल साहब, ये हमारी आफाक साहिबा शुहदा और उनके घर वालों की बड़ी इज्जत करती हैं, बड़ा खास एहतराम करती हैं, और अगर आप इसका फायदा उठाएं तो अच्छी बात होगी।
आपके ख्याल में हम कैसे इनकी रदायत हासिल कर सकते हैं?
आपको कोई खास काम करने की जरूरत नहीं है जनाब, खुदा का शुक्र है कि उनको कोई माली जरूरत नहीं है कि आप कुछ गलत सोचें। सिर्फ अगर हमारी हाजिया साहिबा सुन लें कि उनके शौहर का दिल एक मोमिना और साहिब तकद्दस खातून तक पहुंचने वाला है और इस तरह उनके शौहर को सवाब मिलेगा, तो मेरे ख्याल में इजाज़त दे देंगी वो।
हाजिया भी अच्छी खातून हैं और उनके दामाद भी बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप बिल्कुल परेशान ना हों।
अच्छा, आपके दामाद जो मोहतरमा के बेटे हैं वो डॉक्टर हैं?
जी डॉक्टर हैं।
बाबा जान।
क्या है बेटा?
एक मिनट प्लीज, आप आ सकते हैं।
एक मिनट, अगर इजाजत दें तो मैं अभी आता हूँ।
जी कोई बात नहीं। अच्छा, इजाजत है जब तक आप वापस आए मैं एक सिगरेट पी सकता हूँ?
अगर रोदे से नहीं है तो कोई बात नहीं।
ओफो, इस दिमाग को मेरे क्या हो गया है। इंशाल्लाह इफ्तार के बाद
आता हूँ।
नहीं रसूल साहब, हम एक दूसरे के लिए मुनासिब नहीं हैं। मुझे डर है कि वो तुम्हारा दामाद जो डॉक्टर है सब गड़बड़ ना कर।
सौरभ ने कहा है?
जी हाँ, अभी फोन पर बात की थी।
हकीकत पूछो तो मुझे भी इस पर शक है, जबान से कुछ कहता है और आंखों से कुछ, और कोई भी चीज आंखों से बढ़कर सच नहीं बोलती।
सौरभ अभी खुद ही घर आ रहे हैं, कह रहे थे बस आप थोड़ा उनसे बातचीत करते रहिए ताकि वो भी पहुंच जाएं।
अब क्या बात करूं, अब तो कोई बात नहीं।
बाबा
ठीक है, मैं अभी फोन करता हूं।
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अगर आप इजाजत हो तो मैं चलता हूं अब।
कहाँ जाना चाहते हैं?
असल में जब गए थे उसी दौरान एक बड़ा जरूरी फोन आया, मुझे जाना पड़ेगा जरूर।
माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बातें सुन ली, आपकी जो भी शर्त होंगी हम मानेंगे।
मैंने तफसीली तौर पे हाजी साहब को सब बता दिया, आप उनसे बात कर सकते हैं, वो सब कुछ बता देंगे आपको।
लेकिन अभी मुझे तो बहुत सी बातें आपसे करनी है जनाब।
कोई बात नहीं जनाब, मैं कल आ जाऊंगा, जो बात होगी कल ही कर लेंगे, मैं हाजिर हूँ।
अगर कुछ मिनट और बैठे तो मेरे शौहर भी आते ही होंगे।
वाकई मैं खुद भी डॉक्टर साहब की ज़ियारत करना चाहता था, लेकिन यकीन कीजिए बहुत ही अहम मसला है, जाना पड़ेगा। इफ्तार के लिए कुछ सामान लेना है, रोटी लेनी है, हलीम लेना है, इसलिए मैं कल ज़रूर उनसे मिलने के लिए आऊँगा। हाजी साहब आप कोई जहमत ना करें, कोई तकल्लुफ ना करें, मैं चला जाऊँगा, मैं रास्ता मुझे मालूम है। खुदा हाफिज।
क्या हुआ एक बैग?
क्या कर रहे हो, कैसे गाड़ी चला रहे हो? हटाओ गाड़ी यहां से।
नहीं पता किसने और किस लिए फोन किया था, लेकिन जैसे ही इसने सुना तुम डॉक्टर हो वैसे ही सहमा सा लगने लगा था।
वही हुआ जो मैंने सोचा था। ये उन दलालों में से है कि जो ब्रेन हेमरेज का इंतजार करते हैं कि इस बीच कुछ कमा सके।
लेकिन पैसे की बात नहीं की?
उस तक तो बात ही नहीं पहुंची। जैसे ही सुना कि मैं डॉक्टर हूं तो डर गया होगा। आप मुतमईन रहें कि अब इधर नजर भी नहीं आएगा। उसने अपना नाम क्या बताया?
कह रहा था उसी हॉस्पिटल में काम करता है जहां वो ब्रेन हेमरेज वाले मरीज एडमिट है। मरीज का नाम हाजी फताह सुल्तानी है।
हाजी फताह सुल्तानी?
हाँ यही नाम तो बताया था। क्या बात है?
मैं उन्हें पहचानता हूँ।
पहचानते हो?
हाँ भी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई। मेरे दोस्त सादिक के बहनोई हैं। किस अस्पताल में आपने बताया? माफ कीजिएगा आपको यकीन है? जी 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 जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
क्या हुआ?
ठीक कहा, सुल्तानी का ब्रेन हेमरेज हो गया, लेकिन हॉस्पिटल में कोई सखाई नाम का काम नहीं करता है।
वाकई? इसका मतलब क्या है?
कोई भी हो, अगर इतनी बात ठीक कही है तो बाकी बातें भी ठीक होंगी। तुम उनसे बात नहीं करोगे?
सोचना भी नहीं इसके बारे में, सोचना
कहना
नहीं।
क्या चाहते हो?
ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त का बहनोई है, मैं उनसे क्या कहूँ?
सौरभ ये कैसी बात कर रहे हो, तुम्हारी अम्मी की जान की बात है।
नहीं राना, अगर वो खुद राजी न हो तो मैं कुछ नहीं कह सकता। अपने दोस्त से कहूँ बीच में पढ़कर?
तुम क्या छुपे छुपे बात कर रहे हो?
अम्मी जान आप किस लिए कमरे से बाहर आई हैं? आपको आराम करना चाहिए।
मुझसे कोई बात छुपा रहे हो?
कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं।
नहीं है, यानी जो मुझे नहीं जानना चाहिए।
नहीं, असल में अभी कुछ देर पहले किसी अजीज की मौत की खबर सुनी है।
खुदा गरीबे रहमत करे। कौन था?
आप नहीं जानती, लेकिन सादिक को तो पहचानती है ना, ये उनके घर का दामाद था, वो मरहूम। छोड़िए, आप अपने कमरे से बाहर क्यों आई? हमने क्या तय किया था? घर में, लेकिन सिर्फ आराम करने के लिए।
भरपूर आराम तो मौत के बाद ही मिल जाएगा।
अरे अम्मी जान, ये कैसी बातें कर रही हैं? चलिए चलिए अपने कमरे में आराम कीजिए।
हाँ ले जाओ।
इंशाल्लाह आप हमेशा खुश रहें। आप मेरी हालत को नहीं समझ सकते हैं, हर फोन की घंटी से हमारा दिल घबरा जाता है। सोचते हैं कोई अच्छी खबर देने वाले हैं या बुरी खबर देने वाले हैं। उसकी माँ भी मैं क्या बताऊं, इसी चक्कर में बीमार पड़ गई है और वो खुद भी CCU में एडमिट है।
वो तो इस वक्त हॉस्पिटल में है, तो किसी ने हॉस्पिटल से क्यों नहीं फोन किया?
बेटा इसलिए कि उनकी फैमिली वाले भी तैयार नहीं हुए हैं।
अगर राजी नहीं है तो तो फिर कैसे?
मैंने कहा तैयार अभी नहीं हुए, तैयार होने की कुछ शर्तें हैं।
जो भी शर्त हो हम मानेंगे। जनाब मेरा बस यही एक लड़का है, 6 महीने से इंतजार कर रहे हैं, अगर देर हो जाए तो हम उसे खो बैठे।
मुश्किल ये है कि उनकी अहलिया भी तैयार नहीं हुई है। बस
मैं आपकी बात समझ नहीं पाया, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए?
देखिए नजरी साहब, अभी उनके दिल का जख्म गहरा है।
नजरी, जरा ठीक कहती है।
इस हालत में आप किस लिए आई हैं यहाँ?
जनाब क्या सच कह रहे हैं? क्या मेरे बेटे मोहसिन के लिए कल्ब मिल गया?
सलाम अलैकुम मैडम। जी हाँ, एक केस है कि जिसका तज़किरा मैंने नजरी साहब से किया है।
ठीक है, जरूर जरूर, जो भी शर्त है मानती हूँ, आप सिर्फ मेरे बच्चे की जान बचा लें।
असल में मैडम उनको तैयार करना तो मेरा काम नहीं है।
खुदा के वास्ते आप ही उनसे बात करें, उसकी जवानी पर रहम खाए। मेरा मोहसिन सिर्फ 30 साल का है।
मैं आपकी हालत समझ सकता हूँ मैडम, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ कि आपके सामने एक रास्ता रख सकूं। हाजी की बीवी तैयार नहीं है, यानी अभी तैयार नहीं हुई है। मेरे ख्याल में बेहतरीन काम यह है कि आप अपने बच्चों के साथ वहां जाइए, शायद उनको तैयार कर ले जाएं आप लोग।
ठीक है ठीक है, मैं खुद जाकर उनके पैर पड़ूंगी और जिंदगी भर चाहे उनके यहाँ जाकर नौकरी करूंगी।
जानता हूं मुझे किस लिए ऐसी जगहों पर लाते हो, लेकिन जान लो मेरे लिए सिर्फ एक बात अहम है, और वो ये कि सरमस्त मेरे कागजात तक ना पहुंच पाए ताकि शरीफ अपने हक को हासिल कर लें। बस
सलाम अलैकुम मैडम।
सलाम अलैकुम।
वालेकुम सलाम।
हाँ बेटा, हाँ हाँ बेटा। मेरी पोती है।
माफ कीजिएगा लेकिन मैं समझ नहीं पाई, क्या आप हाजी के रिश्तेदारों में से हैं?
नहीं मोहतरमा, अस में हम आप ही से मिलने आए हैं।
मुझसे?
जी
जी जी जी, मैं आपको बताती हूँ, लेकिन कुरान की कसम हमें बाहर मत निकालिएगा।
मैं क्यों आपको बाहर निकालने लगी?
अस में मैं कैसे कहूँ मैडम, इस मासूम बच्चे को देखिए, मेरी पोती है, अभी 1 साल की भी नहीं हुई है। मैं आपसे ख्वाहिश करती हूँ, गुजारिश करती हूँ, मेरे बच्चे की जान बचा लीजिए, इस बच्चे को यतीम न होने दीजिए, खुदा के वास्ते। मैडम 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 मैडम, कुरान के सदक़े में मेरी बात पूरी होने दीजिए, ख्वाहिश करती हूँ, मेरे जवान पर रहम खाइए, मैं जिंदगी भर आपकी नौकर बनकर रहूंगी।
आफाक।
Thank you.